वहीं दूसरी ओर आस्था के चेहरे पर आज एक मुस्कुराहट थी, साथ ही साथ उसके दिल में एक खालीपन सा था, क्योंकि उसे उसकी जिंदगी के कुछ ऐसे राज पता चले थे जिनके बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। वो पूरा सच नहीं जानती थी। कहीं ना कहीं उसे ये भी लग रहा था कि क्या एक लॉकेट के लिए कोई किसी की जान भी ले सकता है, लेकिन मसला उसे कुछ और लग रहा था। इसीलिए आस्था जल्दी से अपने डॉक्टर की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी कलेक्ट करना चाहती थी, जिसके द्वारा वो उस डॉक्टर तक पहुंचना चाहती थी जिसे उसने देखा था। उसका नाम आज भी उसके दिमाग में अच्छी तरह से छपा हुआ था। साथ ही साथ उसकी अजीब सी आंखें, उसका लुक, सब कुछ आस्था की आंखों में बचपन से ही छपा हुआ था, जिसे सपने देखकर कितनी ही रातों को शुरू शुरू में वो सो भी नहीं पाती थी। लेकिन जैसे जैसे नानी माँ ने अपने पिशाच की कहानी, भूत की कहानी सुना सुनाकर आस्था के दिल से उस डॉक्टर का डर कम किया, लेकिन आस्था के दिल से आज तक उसकी छवि नानी माँ मिटा नहीं पाई थी। और आस्था मुस्कुराते हुए नानी माँ को गले से लगा लिया। और इस वक्त नानी माँ ने फिक्र जताते हुए आस्था से बोला, बेटी एक बार फिर सोच ले, तू जो करना चाहती है वो भी तेरे लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है, क्योंकि तू अब अकेली जान नहीं है, तेरे साथ एक और नन्ही सी जान पल रही है और तुझे उसका अपने से ज्यादा ख्याल रखना होगा। आस्था ने मासूमियत से कहा, नानी माँ बस हम अपने बच्चों के लिए ही तो सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को ऐसा बचपन नहीं देना चाहते जो बचपन हमने और अरमान जी ने जिया है। इसीलिए हम बस जल्द से जल्द अपने दिल के बोझ को खत्म करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी से परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं। इसीलिए हम अपना अतीत जानना चाहते हैं। उस वक्त हॉल में केवल नानी माँ और आस्था ही मौजूद थे। दादाजी उस वक्त पार्क में गए हुए थे और सुमित, आकाश, ध्रुव, आहान, वो चारों एक साथ कोई जरूरी बातचीत कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से अबीर सिंह राठौर ने पूरे अंडरवर्ल्ड पर राज कायम कर लिया था, इसीलिए उन्होंने एक बार फिर से अरमान को डेविल किंग बनाने के बारे में सोच लिया था। और इसके लिए उन्हें अबीर के उन खास आदमियों पर हमला करना था जो पावरफुल आदमी ने अबीर को अंडरवर्ल्ड का किंग बना दिया था। वे लोग उसी की प्लानिंग कर रहे थे और उन्होंने अच्छी तरह से प्लानिंग भी कर ली थी। उन्हें बस अब सिर्फ और सिर्फ अबीर के आदमियों पर एक अच्छा सा मौका देखकर हमला करना था। लेकिन अरमान सिंघानिया का सख्त इंस्ट्रक्शन था कि किसी को भी बिना गलती की सजा नहीं दी जाएगी, तो इस बात का उन्हें खास ख्याल रखना था। वे सबके सब उन आदमियों का पता तो लगा चुके थे, लेकिन साथ ही साथ उन्हें अब सिर्फ और सिर्फ उन आदमियों के कोई ना कोई गलती करने का इंतजार था। वहीं दूसरी ओर अब जैसे ही आस्था और नानी माँ एक जगह बैठकर बातें कर रही थीं, ठीक उसी वक्त राधिका और रौनक अपने हाथ में बैग थामे वहां पहुंची। उन दोनों को इस तरह से एक साथ देखकर सबकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। नानी माँ हैरानी से उन दोनों की ओर देखकर बोली, ये सब क्या है? राधिका बिटिया, रौनक बिटिया, आप दोनों कहीं जा रही हैं क्या? इस तरह से बैग आपके हाथों में क्यों है? रौनक ने नानी माँ को गले से लगाकर कहा, नानी माँ मेरी जिंदगी के ये सबसे ज्यादा अमेजिंग दिन थे जो मैंने आपके साथ बिताए हैं। रियली यू आर सो स्वीट और मैं आपको बहुत ज्यादा मिस भी करने वाली हूँ। लेकिन एक्चुअली जैसे कि आपको पता है, आस्था भी अब कॉलेज ज्वाइन करने वाली है और आस्था की ऑनलाइन क्लासेस उससे ज्यादा तो हमने अटेंड की हैं, तो इसीलिए बस अब मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करके कुछ ना कुछ अपना मुकाम हासिल करना चाहती हूँ। आखिरकार कब तक मैं रश्मि दीदी के ससुराल में रह सकती हूँ? और एक ना एक दिन तो जाना ही है, और सबसे बड़ी बात, रश्मि दीदी ने हमें रहने के लिए खुद अपना फ्लैट दिया है, तो इसीलिए बस मैं अब जल्द से जल्द वहां जाकर शिफ्ट होना चाहती हूँ। और राधिका दीदी भी मेरे साथ रहेंगी, और राधिका दीदी का कल एक इंटरव्यू है तो उन्हें उस इंटरव्यू में भी जाना है, जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं। अब जैसे ही रौनक ने ये कहा, नानी माँ की आंखें नम हो गईं और तुरंत आस्था उठी। उसने रौनक और राधिका दोनों को गले से लगा लिया और इमोशनल होते हुए बोली, लेकिन हम आप दोनों के बिना कैसे रहेंगे? हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं लगेगा। तभी राधिका ने आस्था के गालों को छूते हुए कहा, तुम प्लीज बिल्कुल भी रोना मत, अगर तुम रोगी तो तुम्हारा पति एक बार फिर से मुझे यहाँ 10 से 15 दिन और रहने के लिए मजबूर कर देगा। और प्लीज आस्था, अब मैं जाना चाहती हूँ, मैं अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहती हूँ, सक्सेसफुल होना चाहती हूँ। मैं इस तरह से किसी के ऊपर डिपेंड होकर नहीं रहना चाहती हूँ। अगर तुम मेरी बात नहीं समझोगी तो मेरी बात कौन समझेगा? ऐसा कहकर राधिका ने आस्था को समझाया। और ये वाली बात सुनकर कि अगर आस्था की आंखों में आंसू आए तो उसका पति एक बार फिर से उसे यहाँ रहने के लिए मजबूर कर देगा, आस्था के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि आस्था के कहने पर ही अरमान ने आस्था के आंसुओं की वजह से ही राधिका को एक हफ्ता वहां रहने के लिए ऑर्डर दिया था। आस्था हल्की मुस्कान से बोली, ठीक है हम नहीं रोएंगे राधिका दीदी, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जिंदगी में कामयाब होना कितना ज्यादा जरूरी है, और हमें बहुत खुशी होगी कि अगर आप अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। और हाँ, प्लीज हम एक वादे के साथ आपके यहाँ से जाने की इजाजत दे सकते हैं कि जब भी आपको टाइम मिलेगा और जब भी आपकी कोई ना कोई हॉलीडे छुट्टी होगी तो वीकेंड में आप हमसे मिलने के लिए जरूर आएंगी और पूरा दिन हमारे साथ बिताएंगी। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा, राधिका और रौनक दोनों ने उसे गले से लगा लिया और उसके माथे को चूम लिया। ठीक उसी वक्त अपनी पूरी प्लानिंग करने के बाद आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान वहां आ गए थे। रश्मि उस वक्त किचन में थी जो सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, क्योंकि रश्मि को राधिका और रौनक पहले ही बता चुकी थी कि वे आज यहां से चली जाएंगी, तो इसीलिए रश्मि सुबह सुबह उठकर उनकी पसंद का ब्रेकफास्ट बनाने लगी थी। अब जैसे ही आहान और सुमित ने राधिका और रौनक के बैकपैक देखे और उन्हें वहां खड़े हुए देखा तो दोनों के माथे पर बल पड़ गए। वहीं आहान तो रौनक को घूरते हुए बोला, हेलो मिस हवा हवाई, तुम कहाँ चलती? अपने उस घोड़े पर सवार होकर। आहान रौनक की बुलेट को घोड़ा कहकर बुला रहा था। तब रौनक चिढ़ते हुए बोली, खुश हो जाओ छछुंदर, अब तुम्हें मेरी ये शक्ल बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। अब जैसे ही रौनक ने ये कहा, आहान के चेहरे पर 12 बज गए थे, क्योंकि रौनक के साथ रहते रहते, उसके साथ टाइम स्पेंड करते करते उसे काफी अच्छा लगने लगा था और उसे खुद ही पता नहीं चला कि कब कितनी हंसी खुशी से शादी भी गुजर गई। दोनों के बीच कुछ दुश्मनी थी, सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था, लेकिन अब रौनक का यूं जाना आहान को मायूस कर गया था और उसके दिल में कुछ अजीब सा खालीपन सा महसूस हुआ जिसका उसे अभी कोई एहसास नहीं था। वहीं सुमित तो घूरते हुए राधिका को देख रहा था। सुमित तो राधिका से ये भी नहीं पूछ सकता था कि वो क्यों जा रही है और कहाँ जा रही है, क्योंकि उसने राधिका पर अपने पूरे हक पहले ही खो दिए थे। वहीं आस्था सुमित की आंखों को देख रही थी। कहीं ना कहीं सुमित की आंखों में राधिका के लिए बेशुमार प्यार था, लेकिन सुमित की ही गलती थी कि उसने अपने प्यार को वक्त रहते एक्सप्रेस नहीं किया था। अगर वो अपने प्यार को एक्सप्रेस करता तो शायद राधिका हमेशा हमेशा के लिए सुमित के साथ रहती, इस तरह से उसे छोड़कर नहीं जाती। लेकिन अपने एक अहंकार के चक्कर में राधिका से प्यार का इजहार नहीं किया और शायद यही वजह है कि राधिका उसे छोड़कर जा रही थी।
राधिका भी अपने प्यार के लिए भी भीख नहीं मांगना चाहती थी, क्योंकि अगर इस तरह से भीख मांगकर प्यार हासिल किया जाए तो वो प्यार प्यार नहीं रहता, एक तरह का बोझ बन जाता है, और राधिका सिर्फ प्यार चाहती थी, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। वेल, अब जल्दी ही दादाजी भी सैर सपाटे से वापस आ गए थे और उन्हें बैग समेत देख कर थोड़े से उदास भी हुए थे, लेकिन क्योंकि राधिका और रौनक दादाजी को पहले ही प्रॉमिस कर चुकी थी तो इसीलिए उन्होंने भी अब अपने स्वार्थ के लिए उन्हें वहाँ रोकना जरूरी नहीं समझा। हालांकि राधिका और रौनक के आ जाने पर उनका परिवार पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था, लेकिन वो इस तरह से अपने स्वार्थ के चक्कर में उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। रौनक की पढ़ाई थी, राधिका का करियर था, तो इस तरह से भला वो उन्हें कैसे फोर्स करके अपने पास रख सकते थे। तो कहीं ना कहीं ये सोचते हुए दादाजी ने उस वक्त उन्हें जाने की इजाजत दे दी थी। तभी रश्मि की आवाज आई, हेलो आ जाइए आप सब के सब, ब्रेकफास्ट रेडी है। अब जैसे ही रश्मि ने ये कहा, आकाश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। आकाश और रश्मि भी अपने विला में जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि नानी माँ ने इंसिस्ट किया था तो आकाश ने जब तक कि अरमान का बच्चा सही सलामत इस दुनिया में नहीं आ जाता उसने वहाँ रहने का फैसला कर लिया था। लेकिन रश्मि ने जब ये सुना कि आस्था कॉलेज ज्वाइन कर रही है तो रश्मि भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी और इसीलिए उसने आकाश से भी अस्पताल में जाने की इजाजत ले ली थी कि अगर आस्था कॉलेज जा सकती है तो वो भी अपना हॉस्पिटल कंटिन्यू करना चाहती है। आखिरकार कब तक वो इस तरह से घर पर रहेगी, और वैसे भी शादी हो चुकी है, सारे फंक्शन हो चुके हैं और शादी हुए अब एक हफ्ते से ज्यादा भी होने वाला है, तो इसीलिए वो अब आराम से अपना कॉलेज ज्वाइन कर सकती है और वो हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं। तो रश्मि की बात सुनकर पहले तो आकाश मना करना चाहता था, लेकिन फिर उसे भी उसकी बात में दम नजर आ रहा था, क्योंकि इस तरह से भला अकेली रश्मि घर पर क्या करती, तो अच्छा ही होता कि वो वापस हॉस्पिटल ज्वाइन करे। और आकाश ने बोल दिया कि वो रोज रश्मि को पिक एंड ड्रॉप भी करेगा। तब रश्मि मुस्कुराती। वहीं दूसरी ओर वहीं अरमान ने उस पूरे के पूरे मेडिकल कॉलेज को खरीद लिया था ताकि वहां पर अगर पत्ता भी हिले तो उसके बारे में अरमान सिंघानिया को पता हो, क्योंकि अरमान सिंघानिया अपनी बीवी के लिए हर एक जगह जहां पर वो जाना चाहती है बिल्कुल महफूज बनाना चाहता था, किसी तरह का कोई भी उसके लिए परेशानी या कुछ भी क्रिएट नहीं करना चाहता था। जल्दी ही सबके ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद राधिका और रौनक ने उन सबसे विदा ली। दादाजी ने एक ड्राइवर को उन दोनों को छोड़ने के लिए कह दिया था। तभी ध्रुव आहान की ओर देखने लगा। आहान के चेहरे पर किस तरह से एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे वो उन्हें देखकर एंजॉय कर रहा था, क्योंकि वो काफी ज्यादा बदला बदला सा नजर आ रहा था और वो कुछ कहना चाहता था लेकिन उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। तभी ध्रुव मौके का फायदा उठाकर दादाजी की ओर देखते हुए कहा, दादाजी ड्राइवर को भेजने की क्या जरूरत है, राधिका दीदी और रौनक को मैं खुद छोड़कर आ जाऊंगा, वैसे भी रौनक से मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई है और राधिका दीदी और रौनक तो बहुत प्यारी हैं। ऐसे बोलकर ध्रुव आहान को देखने लगा। अब ध्रुव की तारीफ करने पर वे दोनों की दोनों शर्मा उठी और रौनक तुरंत चहकते हुए बोली, ये आइडिया बेस्ट है, वैसे भी हमें आपकी कंपनी बेहद पसंद है। रौनक जो की मुंह फट थी, जैसे ही उसने ये कहा आहान घूर कर रौनक को देखने लगा, मानो कि वो उसे कहना चाह रहा हो कि जैसे मुझ में तो कांटे लगे हैं मैं तो तुम्हें सिंग मारता हूँ जो तुम्हें मेरी कंपनी पसंद नहीं है। लेकिन वो कह नहीं पाया, लेकिन उसका चेहरा साफ साफ बता रहा था कि वो डेस्परेटली उसे यही सब कुछ कहना चाहता है। अब जल्दी ही ध्रुव आहान और सुमित की ओर मुस्कुराकर देखता हुआ राधिका और रौनक को लेकर वहाँ से चला गया। और उनके जाते ही आहान को तो ऐसा लगा मानो कि उसका दिल तोड़कर किसी ने चकनाचूर कर दिया और वो सीधा दंदनाते हुए अपने कमरे में चला गया। सुमित के लिए भी वहाँ रुके रहना मुश्किल हो चुका था, इसीलिए वो भी अपने कमरे में चला गया। वहीं रश्मि ने आस्था को मुबारकबाद दी कि फाइनली वो कॉलेज ज्वाइन कर रही है, तो इसीलिए अब वो क्योंकि कल से कॉलेज ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन डॉक्टर रश्मि आज से ही अपने हॉस्पिटल में जाना चाहती थी, इसीलिए उसने आस्था से विदा ली और उसे ढेर सारा आराम करने को कहकर वो भी आकाश के साथ अब निकल चुकी थी। अब घर में केवल आस्था, नानी माँ और दादाजी मौजूद थे। तब दादाजी मुस्कुराते हुए आस्था के पास आए, उसके सर पर हाथ रखकर बोले, बच्चे जो तुम्हारा दिल आए तुम करो, बस बिल्कुल भी किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं लेना है और अपना पूरी तरह से ख्याल रखना है, क्योंकि मेरा बच्चा तुम में, हमारी सांसें बसी हैं। ऐसा बोलकर दादाजी ने आस्था को बेहद मान सम्मान दिया और फिर दादाजी अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए। तब नानी माँ ने आस्था से कहा, तुम चलो मेरे साथ। लेकिन इससे पहले कि नानी माँ आस्था को लेकर अपने कमरे में जा पाती, अरमान तुरंत वहाँ आ गया था। अरमान को देखकर आस्था हैरान हो गई, लेकिन अरमान ने तुरंत आस्था के पास आकर कहा, मैंने सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिया है और कॉलेज भी मैंने तुम्हारे नाम पर खरीद लिया है, तो इसीलिए अब तुम आराम से वहाँ पढ़ सकती हो, जो चाहे वहाँ कर सकती हो और तुम्हें किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था की आंखें हैरानी से फैल गई और वो सरप्राइज होकर बोली, लेकिन आपने कॉलेज क्यों खरीद लिया? हमने आपको कॉलेज खरीदने के लिए थोड़ी ना कहा था, हमने तो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए कहा था।